प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 24 मई 2016 है और आज के इस afeis.com में मैं डॉ विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप में स्वागत करता हूं। और इसी के कंटिन्यूएशन में फ्रेंड्स, मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सूरज सिंह राज, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अखिलेश कुमार, आप कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, कमल नयन गुप्ता, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, अमित कुमार भारती, पलेरा से हैं, बाबूलाल धौलपुर, राजस्थान से हैं, संजीव कुमार दिल्ली से हैं, अजय कुमार विश्वकर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और मनीष पूर्वे दरभंगा बिहार से हैं। तो सूरज, अखिलेश, कमल, अमित, बाबूलाल, संजीव, अजय और मनीष, आप सभी 8 नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अब दो छोटी छोटी सूचनाएं हैं। पहली सूचना तो रूटीन की है कि करंट कंटेंट में लगातार हम लोग कुछ न कुछ सामग्री पढ़ने के लायक जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों को मालूम पड़ती है वह आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज करंट कंटेंट में आप लोग जरूर जाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट सूचना यह है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अभी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स की एक सीरीज प्रिपेयर की है, आप आईएएस की तैयारी कैसे करेंगे, इस सब्जेक्ट पर आईएएस की तैयारी कैसे करें, उसका फर्स्ट पार्ट इसमें afeis.com पर डाला गया था और उसका सेकेंड पार्ट कल रिलीज किया गया है। सेकेंड पार्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए, वो जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात की गई है। मित्रों, दरअसल हो ये रहा था कि पिछले लंबे समय से लगातार स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आते थे और उनका पहला प्रश्न, जो मैं समझता हूं कि काफी कुछ वाजिब भी था, वो ये होता था कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, कुछ किताबों के नाम बताइए। उस समय मैं सामान्य तौर पर एनसीईआरटी की किताबों के ही नाम लेकर बाकी सब स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देता था, क्योंकि मेरी ये मान्यता है, उस समय भी थी, कि स्टूडेंट की अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है और उस पृष्ठभूमि के हिसाब से उसको किताबें सूट करती हैं। लेकिन इस दौर में व्यावहारिक तौर पर मैंने महसूस किया कि नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक बुक्स तो बता ही दी जानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि यदि नहीं बताया जा रहा है तो जो मार्केट है वो किताबों से बिल्कुल लदा भरा पड़ा है। स्टूडेंट्स वहां जाता है तो एक भ्रमित हो जाता है कि इसमें से कौन सी किताबें लें, कौन सी न लें। कभी तो उसे कोई किताब अच्छी लगती है, कुछ समय के बाद उसे दूसरी किताब अच्छी लगने लगती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने महसूस किया कि नहीं, स्टूडेंट्स को एक जो बेसिक, एक अच्छी जो किताबें हैं जो पढ़ी ही जानी चाहिए, उनके बारे में तो कम से कम बता ही दिया जाए और फिर आगे वे अपनी जरूरत के हिसाब से फिर अपने फैसले खुद कर लिया करेंगे। अगर उससे भी किसी को हायर लेवल की स्टडी की जरूरत है तो हायर लेवल की किताबों पर चला जाएगा, या जो किताबें बताई गई हैं एक बार उलटने पलटने के बाद हो सकता है कि वो किताबें वो पहले ही पढ़ चुका हो या उसका जो अभी का स्टैंडर्ड है उन किताबों से अधिक हो गया हो तो वह उन्हें छोड़ देगा। लेकिन कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मिलेगा, एक फोरम मिलेगा जहां वो अपना मूल्यांकन कर सकता है। तो इसको बेस बनाकर मित्रों, वो थोड़ा लंबा लेक्चर है, लगभग 1 घंटे 5 मिनट का है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ किताबों के नाम ही नहीं गिनाए हैं कि मटेरियल के नाम गिना दिए कि आप ये पढ़ लीजिए, वो तो 4-5 मिनट में खत्म हो सकता है। मैंने उसके पीछे एक लॉजिकल कारण भी बताए हैं कि ये किताब क्यों आपसे पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड की जा रही है। तो मित्रों, इसका जो सेकेंड पार्ट है ये रिलीज किया जा चुका है, आप सब अगर चाहें तो आप उसे सुन सकते हैं और मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ी मदद तो मिलेगी ही। इसका जो थर्ड पार्ट है फिर ये कि इन किताबों को आप पढ़ेंगे कैसे, या इसकी दिशा और दशा क्या होगी, डायरेक्शन की मैं ज्यादा बात करता हूं, उसको लेकर के उसका थर्ड पार्ट तैयार किया गया है। इसके कुछ दिनों के बाद उसका थर्ड पार्ट भी रिलीज किया जाएगा। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। मेरे पास एक मेल आया है, और उस मेल में ये अच्छी बात कही गई है। और बात ये कि टीना डाबी ने भी यही बात कही है कि स्टूडेंट्स में पेशेंस होना चाहिए। सच पूछिए तो जितने भी सफल स्टूडेंट से आप बात करेंगे, हर कोई पेशेंस की बात करेगा ही करेगा, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन ये होती है, मनुष्य का व्यवहार होता है और सीधे सीधे मन और मस्तिष्क से जुड़ी हुई बात है। मित्रों, अगर आप मनुस्मृति उठा करके देखेंगे तो सोचिए कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, कुछ लोग अलग अलग वक्त बताते हैं मनुस्मृति की, चलिए हम लोग 1500 साल पहले की बात मान लेते हैं, 2000 साल पहले की मान लेते हैं। उस समय जबकि हमारे मन के भटकाव के लिए इतनी सारी चीजें नहीं थी, इतने फास्ट कम्युनिकेशंस नहीं थे, हमारे हाथ में मोबाइल फोन, यूट्यूब और व्हाट्सएप और आई डोंट नो व्हाट एंड व्हाट कुछ भी नहीं था, बहुत ही स्लो रफ्तार की जिंदगी थी, पैदल आना जाना होता था। ऐसे समय में मतलब सच पूछिए तो आदमी के पास ऐसे बहुत कम रीजन रहे होंगे जिससे कि वो अपना पेशेंस खो सके, लेकिन उस समय का आदमी भी पेशेंस तो खोता ही होगा, धैर्य तो छोड़ता ही होगा। तभी तो मनु स्मृति में मनु को ये कहना पड़ा कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं और उसमें सबसे पहला लक्षण है धैर्य। सोच करके देखिए। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा मित्रों की, जो मनुस्मृति है वो राजा मनु के द्वारा तैयार किया गया, उनके राज्य का एक कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर है, लेकिन इसे बहुत बड़ी ऋषि मुनियों की सभा में तैयार किया गया था। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसने मिलकर के लोगों ने मिलकर के और बहस करके और फिर हमारे संविधान को रूप दिया है, ठीक उसी तरह से मनुस्मृति ने ऐसा नहीं था कि वो अकेले बैठे और उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। एक बड़ी बड़ी सभा थी जिसमें कहा जाता है कि लगभग 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे और ये ऋषि मुनि जो उस समय के विद्वान कहे जाते वो इकट्ठे हुए थे और बकायदे बहस होकर के फिर मनुस्मृति की रचना की गई थी। यानी कि इन पढ़े लिखे सभी विद्वान उस समय के लोगों को भी ये जरूरत महसूस हुई कि हमारे लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो धैर्य आपके व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख अंग होता है, अगर धैर्य नहीं है तो सच पूछिए तो बाद में आप दूसरी जितनी भी चीजें लेकर के आएंगे, करना चाहेंगे, वो सब बेकार हो जाएंगी। नो डाउट टीना डाबी ने भी धैर्य की बात कही है कि यू मस्ट हैव पेशेंस। अब मैं इसी को लेकर के थोड़ी सी उन चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो शायद गलत तरीके से धैर्य का अर्थ निकाल लिया जाता है ना, मैं क्या होती है, कैसे होती है, उन छोटी छोटी चीजों पर मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से इस पर बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस पहले पुराने ऑडियो में मैंने इस पर बातें की हैं, लेकिन चलिए हमेशा चीजें नई होती जाती है तो मैं इसे स्पेशली आप लोगों के संदर्भ में इसकी बात कर रहा हूं, जीवन के संदर्भ में भी है और सच पूछे तो सबके संदर्भ में भी है। देखिए, पेशेंस का अर्थ बहुत लोग गलत रूप में प्रतीक्षा से लगा लेते हैं कि आप वेट कीजिए। नो डाउट कि पेशेंस वेट करने से बहुत अलग नहीं है। वेट करना एक तरह से पेशेंस का को एक तरह से एक रूप देना है। आपके अंदर पेशेंस है, आप इसका प्रमाण कैसे देंगे? दो तरीके से देंगे, एक तो आप में घबराहट नहीं हो रही है, जल्दबाजी का आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि आप शांत रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप में पेशेंस है। ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है तो आप परेशान नहीं हो रहे हैं, ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो है पेशेंस। लेकिन मित्रों, जब आप पेशेंस और प्रतीक्षा को एक दूसरे का पर्याय मानने लगते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी गलती की शुरुआत हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बड़ा काम कर रहे हैं, तो अब जब आप बड़ा काम कर रहे हैं तो यहां आपको प्रतीक्षा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, महसूस किया है, खुद भी महसूस किया है, दूसरों से भी बातचीत करते हुए देखा है कि लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, जब तक मेरी एज है तब तक, जब तक मेरे अटेम्प्ट है तब तक मैं वेट कर सकता हूं, और वो वेट करते रहते हैं और इसे वो अपना धैर्य मान लेते हैं कि नहीं, मैं इतना धैर्यवान हूं कि मैं इतना वेट कर रहा हूं। मित्रों, ये जो पेशेंस है, ये जो वेट करना है, ये पेशेंस नहीं है, है ना। पेशेंस एक बहुत ही साइंटिफिक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। ये बेसिकली मनुष्य के द्वारा लिया गया एक रीजनेबल डिसीजन है, आप कह सकते हैं कि एक लॉजिक डिसीजन है पेशेंस। अब मैंने कहा कि ये लॉजिक डिसीजन है पेशेंस, तो उसका मतलब क्या है? जैसे प्रतीक्षा, तो कब तक प्रतीक्षा? मान लीजिए कि मैं गरीब हूं तो मैं धनी होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं तो कब तक, क्या टिल माई लास्ट ब्रेथ, क्या मैं अंतिम सांस तक उसकी प्रतीक्षा करूं? और इस तरह से अगर मैंने प्रतीक्षा की तो क्या मैंने प्रतीक्षा करके अपने धैर्य का प्रमाण दिया और इसके लिए मुझे मेडल मिलना चाहिए? तो अगर मैं प्रतीक्षा को सीधे सीधे इस तरीके का धैर्य मान लेता हूं तो फिर वो धैर्य नहीं है। मैं जो प्रतीक्षा कर रहा हूं उस प्रतीक्षा के पीछे मेरा एक रीजनेबल डिसीजन होना चाहिए, एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ट्रेन 2 घंटे लेट है तो वहां तक की मेरी प्रतीक्षा ठीक है, मेरा धैर्य है। लेकिन अगर ट्रेन इनडेफिनेट टाइम के लिए लेट है, जिसका कोई अनुमान ही नहीं है, आए न आए इसका भी कोई, इसकी भी कोई घोषणा नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर इस समय मान लीजिए कि मैं अपने जहां भी मुझे जाना है और बहुत ही अर्जेंटली मुझे पहुंचना है वहां एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो उसके लिए अगर मैं दूसरी व्यवस्थाएं करने लगता हूं तो ये अधैर्यता नहीं है। मतलब आप नहीं कह सकते कि देखो यार इसको धैर्य ही, इतना भी धैर्य नहीं है कि आएगी ना ट्रेन, आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये तर्क लेता हूं कि आज नहीं तो कल आ जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक रीजनेबल डिसीजन नहीं होगा, एक रैशनल डिसीजन नहीं होगा। ये एक ऐसी प्रतीक्षा होगी जिसको, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आपको अकर्मण्यता का बहुत बड़ा रोल मिलेगा। अकर्मण्यता, आलस्य, आप करना नहीं चाह रहे हैं। हमें एक रास्ता मिल गया, एक तर्क मिल गया कि साहब हम इसलिए नहीं जा पाए, जब ट्रेन ही नहीं आई तो हम क्या करें, तो ये धैर्य नहीं है। अब आप देखिए कि तो फिर धैर्य है क्या? धैर्य के लिए दोस्तों दो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ती हैं। पहला ये कर्म की गति, स्पीड ऑफ वर्क, आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि जो आपके काम की जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी आइडियल है। आइडियल है इस मायने में मैं कह रहा हूं क्योंकि एक ही काम को बहुत तेजी के साथ भी अंजाम दिया जा सकता है और बहुत स्लो भी अंजाम दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को मान लीजिए कि वो 20 पेज का चैप्टर है और उस 20 पेज के चैप्टर को आप 15 मिनट में भी पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत फास्ट पढ़ेंगे तो, और आप स्लो पढ़ेंगे तो उस 20 पेज के चैप्टर को पढ़ने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, और दोनों तरह के समय को लगाने वाले लोग होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 15 मिनट की गति, जो पढ़ने का जो काम है, जो वर्क है, क्या उसको 15 मिनट में 20 पेज खत्म कर देना रीजनेबल है, रैशनल है, या फिर उसको 2 घंटे तक एक्सटेंड कर देना रीजनेबल है या रैशनल है? जब आप इसके रीजनेबिलिटी पर जब आप विचार करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पर जाना होगा कि मैं ये जो 20 पेजेस पढ़ रहा हूं मेरा इसको पढ़ने का पर्पस क्या है। यदि इसको पढ़ने का पर्पस समझना है तब फिर आपको देखना पड़ेगा कि समझने के लिए 20 पेजेस को समझने के लिए क्या रीजनेबल टाइम होता है, पहली बात। और ये जो रीजनेबल टाइम आप करेंगे ये कहीं न कहीं डिपेंड करेगा आपकी अपनी मानसिक क्षमता पर, ये अलग अलग होगा। हो सकता है कि आपके लिए रीजनेबल टाइम 45 मिनट हो और मेरे लिए रीजनेबल टाइम 1 घंटा हो, 1.25 घंटा हो, यह मुझे देखना पड़ेगा कि वो जो सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कि मैथ्स है, साइंस है, तो पता लगा 20 पेज पढ़ने में मुझे 2 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो लिटरेचर का हिस्सा है, चूंकि मेरी बैकग्राउंड लिटरेचर की है, या वो हिस्ट्री का हिस्सा है, मेरी बैकग्राउंड हिस्ट्री की है, तो हो सकता है कि वो 20 पेज पढ़ने में मुझे हार्डली 1/2 घंटा लगे। तो आपको 2 चीजें देखनी होंगी, नंबर 1 कि वो जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा मेरी अपनी कैपेसिटी क्या है। तो जब मैं ऑब्जेक्टिव और अपनी कैपेसिटी को बना देता हूं तो मेरे पास 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है दोस्तों। एक तो मेरी वर्क की स्पीड क्या होगी, एक आइडियल स्पीड क्या होगी, और दूसरा यह है कि मेरा ये जो काम है ये कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी कि फल का समय, फल का मतलब इसका रिजल्ट मिलने का समय, वो समय कितना लगेगा मुझे मालूम होना चाहिए कि उसमें कितना वक्त लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, तो सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में मुझे अपने लिए एक रीजनेबल टाइम फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाने हैं। मित्रों, जैसे ही टीना डाबी ने टॉप किया, मेरे पास मेल आने शुरू हो गए स्टूडेंट्स के, और बड़े जोशीले मेल के, सर आई वांट टू टॉप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और उनकी जो भाषा जो लिखी हुई थी उसे देख करके मैं समझ सकता था कि भाषा पर इनकी कोई कमांड नहीं है। लेकिन जो टाइम उन्होंने फिक्स किया अपने रिजल्ट का, वो एक साल, और वो भी टॉप करने का। तो जब आप एक साल में ही टॉप करना चाह रहे हैं तो अब आपके पढ़ने की स्पीड बहुत तेज होनी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि उतना सिलेबस आपको पूरा करना है। और एक साल के बाद अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप धैर्य खो देंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि अब आप अधैर्य होकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्पीड आपके काम की बढ़ गई है, और परिणाम का समय भी आपने घटा करके एक घंटा कर दिया, एक साल कर दिया है। और जब एक साल में परिणाम नहीं मिल रहा है तब फिर आप निराश होने लगे हैं। इसका मतलब है कि आप अधैर्य की स्थिति में हैं, आपके ये जो डिसीजंस हैं वो रैशनल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को जब हमारे अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो एक अधैर्य की स्थिति पैदा होती है, मन की स्थिति आप कह लीजिए कि गड़बड़ा जाती है। अब जो कैनवास है वो हिल रहा है, आपका मन पर कंट्रोल नहीं रह गया, और जब मन पर कंट्रोल नहीं रह गया है तो आप मान करके चले कि सारी चीजों पर से आपका कंट्रोल छूट गया है, वो गड़बड़ ही करेगा। इसीलिए मित्रों, हम लोग जब नीति शास्त्र के बहुत से दोहे पढ़ा करते थे, उसमें एक बहुत दोहा मुझे आज भी याद आता है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को ऋतु आवे फल होए। माली बाग को सींचता रहता है और वो जानता है कि जब मौसम आएगा तभी फल होगा। और एक लोक कहावत भी है कि गीदड़ की जल्दबाजी में बेर नहीं पकते। हो सकता है कि गीदड़ के मुंह में पानी आ रहा हो, बेर खाने की इच्छा हो रही हो, या उसे भूख भी लगी हुई हो, लेकिन वो अगर जल्दबाजी करेगा तो बेर के फल झाड़ी में बेर तो नहीं लग जाएंगे, वो तो ऋतु आने पर ही फल देगा। तो ये फल के बारे में मैंने बात की मित्रों। तो ये जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो सही मायने में जो धैर्य की स्थिति है वो हमारे अंदर आती है। तो मित्रों, अब इस लाइफ मैनेजमेंट के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो AIR न्यूज से संबंधित है। न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी मित्रों, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज है वो दो न्यूज है। एक तो ये है कि जो RLVTT छोड़ा गया है, जो एक सैटेलाइट छोड़ा गया है, और दूसरा जो भारत और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ है, भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच में जो त्रिपक्षीय पारगमन समझौता हुआ है। मैं आपसे खासकर स्पेशली जो भारत और ईरान के बीच में जो समझौता हुआ है, और खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कल के अपने डेली ऑडियो में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि ईरान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और फिर ईरान के साथ हमारी किस किस तरह की मित्रता हो सकती है, किस किस तरीके के समझौते किए जा सकते हैं। और फिर मैंने मैप के जरिए से भी आपको एक आइडिया देने की कोशिश की थी कि जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, घटनाएं घटती हैं, तो आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। और मैंने स्पेशली उदाहरण देकर के बताया था कि जब आप मैप्स के आधार पर तैयारी करने लगते हैं तो किस तरीके से आपके दिमाग में अपनी ओर से ही नए नए कंटेंट आने लगते हैं, आपकी एनालिसिस पावर बढ़ने लगती है। दोस्तों, अभी ताजे ताजे रिजल्ट आए हैं, आपके आसपास ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, आप उनसे जाइए और उनसे बात कीजिए और मिलिए। मुझे खुशी होती है कुछ स्टूडेंट्स उनसे जाकर के मिलते हैं और अपनी बातचीत का ब्यौरा मेरे ईमेल के जरिए मुझे भेजते भी हैं। जाकर के उनसे पूछिए, ईमानदारी के साथ पूछिए, हिम्मत कीजिए पूछने की कि ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपकी सफलता में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। पूछिए कि यदि मैं ये किताबें रट लेता हूं तो क्या मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाऊंगा। यदि वो बहुत बताने के मामले में बहुत ईमानदार है तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि किताबों की भूमिका ये तो नहीं कि जीरो हो गई, लेकिन बहुत कम रह गई है। सब्जेक्ट्स तो आपको वहीं से पता लगेंगे, बेसिक्स तो वहीं से पता लगेंगे, लेकिन वो आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर देंगे। जो 75% जो रोल है मित्रों, वो अखबारों का, मैगजीन्स का, डिस्कशंस का, आपकी अपनी सोच का, इनका रह गया है 75%। टॉपिक के बारे में आपको किताबों से मिल जाएगा। जैसे ईरान और चाबहार के बारे में, अभी जो बाहर ईरान और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी आपको किताब मदद कर देगी कि ईरान क्या रहा है, कैसे वो संस्कृति जो प्राचीनतम संस्कृति रही है उसका एक हिस्सा ईरान में फैला है, ईरान कैसे शुरू में बहुत ही जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है आर्ट लिटरेचर और कल्चर का, बहुत जबरदस्त सेंटर रहा है। फिर आपको भारत ईरान के जो संबंध रहे उनके बारे में थोड़ा सा बता देगा। लेकिन इसके बाद जब इस क्वेश्चन पर आएंगे तो वो थोड़ी सी आपने मदद कर दी और अब आपको पूरी तरह से अखबार और मैगजीन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी में मैं समझता हूं कि इस जो डेली आरडीओ है उसका थोड़ा सा रोल हो सकता है। तो मित्रों, कल मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट मेरी बातों पर थोड़ा बहुत यकीन करता है उन्होंने उस तरीके से उसे देखा भी होगा। जिन्होंने इस मेरी बात मान करके उसे थोड़ा अंजाम दिया होगा वो आज की जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं, कल रात में जो उन्होंने न्यूज सुनी है, केवल उसकी क्वालिटी का थोड़ा सा मूल्यांकन करें, थोड़ा सा इवेल्युएट करें उसको कि जब उन्होंने कल रात में न्यूज सुनी भारत और ईरान के इन समझौतों के बारे में और आज सुबह जब उन्होंने इसी न्यूज को अखबार में पढ़ा और साथ ही साथ कुछ अखबारों ने एडिटोरियल भी लिखे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एडिटोरियल लिखा तो उस एडिटोरियल को पढ़ा, तो अब उन जब वो चीजें पढ़ रहे हैं तो उस पर उनकी पकड़ कितनी बन रही है। फ्रेंड्स, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा अपने इस वर्ड को कि पकड़ कितनी बन रही है, आपकी कमांड कितनी आ रही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिविल सर्विस में हम उन्हें प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, हमें नहीं मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है तो इस पर प्रश्न आ सकता है और क्यों आ सकता है इसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी। एक तो हमारा ट्रेड का मामला है, दूसरा विश्व आतंकवाद का मामला भी है, तीसरा हमारी अपनी रीजनल सिक्योरिटी का भी है क्योंकि चीन भी पाकिस्तान के माध्यम से भी नहीं कहना चाहिए, चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है कि 2013 में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चीन की नीति है उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स कल जिन्होंने भी थोड़ी सी उस पर थोड़ा सा होमवर्क किया होगा, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि उनको आगे के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए होंगे। तो मित्रों, यदि सच में आप लोगों ने जिसने भी ऐसा किया है और जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं उन्हें फिर आगे की चीजों पर भी मुझे लगता है कि इसी पद्धति को लागू करना चाहिए। दोस्तों, अब जो समझौते हुए हैं उनको देखिए, अब हम दो तीन भागों में बांट कर देख सकते हैं खासकर सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो नो डाउट व्यापार, व्यापार की दृष्टि से यह भारत के लिए समझौता भारत के लिए कितना उपयोगी होगा, नो डाउट यह ईरान के लिए भी होगा, नो डाउट अफगानिस्तान के लिए भी होगा, यह तीनों देशों से जुड़ा हुआ है। और आप नक्शे में देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान को मिड से क्रॉस करते हैं तो फिर अफगानिस्तान आता है, लेकिन अगर हम साउथ बिल्कुल डीप साउथ से जाते हैं तो हम सीधे ईरान में एंटर कर जाते हैं। अब जो चाबहार बंदरगाह है वो आपको फिर देखना चाहिए कि वो कहां पर है, बट नेचुरल है और वो बंदरगाह है तो वो समुद्र के किनारे होगा। फिर जब आप नक्शे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईरान का जो साउथ का हिस्सा है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है और भारत से मैंने बताया कि अगर हम साउथ से एंटर करें तो हम ईरान में पहुंच जाएंगे, अदरवाइज अगर हम लैंड से एंटर करेंगे तो हमें पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा। अब मित्रों, इससे आप छोटा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर चाबहार बंदरगाह पर हम नहीं जा सकते हैं तो अगर हमको अपना सामान अफगानिस्तान में पहुंचाना है या ईरान में पहुंचाना है या ईरान से हमें सामान भारत मंगाना है, और आपको मालूम है कि ईरान से भारत में तेल और यूरिया सबसे ज्यादा आता है, पेट्रोलियम, तो अब ये सब के सब जो आएंगे ये रोड से आएंगे। अब रोड से आने पर अब आप अपनी तरफ से जोड़ते चलिए कि रोड से जब आएगा, एक तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट होता है, आपको मालूम है जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है परिवहन का, सरल मतलब कॉस्ट वाइज तो सस्ता है। दूसरा यह कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी स्टेप ले सकता है, संबंध आप देख रहे हैं कि बहुत नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान कह सकते हैं कि भाई हम रास्ता नहीं देंगे, फिर आपका तो पूरा का पूरा ट्रेड रुक गया, हमारा सामान भी निर्यात नहीं हो पा रहा है, हमारा जो आयात है वो भी नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अब आप इंपॉर्टेंस सोचिए कि चाबहार बंदरगाह क्या है, अब भारत सीधे ईरान तक पहुंच सकता है और ईरान सीधे भारत तक आ सकता है, अरब सागर भारत के किनारे इस साइड से एंटर करेगा, मुंबई वाले साइड से देखिए भारत यहां से शुरुआत करेगा, अरब सागर से होता हुआ वो सीधे ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, तो दूरी भी कम हो गई, कॉस्ट भी कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई, सिक्योरिटी भी इंश्योर हो गई और पाकिस्तान के भी अब हम कह लीजिए कि उस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे गए। आपको क्या लगता है कि ये छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो अभी हम पाकिस्तान से होकर के अफगानिस्तान में एंटर कर रहे थे। फिर आप नक्शे में देखिए, अगर हम चाबहार बंदरगाह पर पहुंच गए हैं तो हम इस चाबहार बंदरगाह पर सामान उतार करके और थोड़े से लैंड एरिया से होते हुए अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। अफगानिस्तान में भी हमारी रिच इंश्योर हो गई, बिल्कुल सुनिश्चित हो गई, पाकिस्तान पर से डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो गई। और मजेदार बात है कि जैसे ही आप अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, फिर से नक्शे में देखिए प्लीज दोस्तों, जिस धैर्य की मैंने बात कही है, सच पूछे तो यही मैं आपको धैर्य का प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है यार जल्दी से इसको खत्म करो, देखो तो अभी 8 क्लिपिंग्स भेजी हैं सर ने और ये भी पढ़ना है और ऑप्शनल पेपर का भी वो पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव टाइप का भी करना है, ये सब करने हैं, तो इसको जल्दी से निपटाओ। ये जल्दी से निपटाना ही अधैर्यता है। हाँ, उस निपटाने के चक्कर में ज्यादातर स्टूडेंट फिर खुद ही निपट जाते हैं, क्योंकि उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको उस पर वो पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, उनको लगता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया, जबकि किया कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं है। तो यही तो धैर्य की मांग होती है कि थोड़ा सा उसको वक्त दें। किसी भी टॉपिक को जितना समय चाहिए आप उसके साथ उतना समय गुजारें। तो जब आप अफगानिस्तान को नक्शे में देखेंगे, आप समय निकालेंगे इसको देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में पहुंचने के बाद आप एकदम मध्य एशिया में पहुंच गए, फिर आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे के सारे एरिया में आप एंटर कर गए, उज्बेकिस्तान, मतलब पूरा मध्य एशिया का रास्ता आपके लिए खुल गया। तो मित्रों, एक तो ये ट्रेड की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, राइट। अब इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रणनीतिक साझेदारी, ये शब्द आपने सुना भी है, न्यूज में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, रणनीतिक साझेदारी। तो ये रणनीतिक क्या है, ये रणनीतिक फिर से बहुत क्लियर है दोस्तों, जो मैंने चीन की बात की, कल भी मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी कि जो चीन है ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर अपना प्रभुत्व जमा रहा है। ग्वादर बंदरगाह पर चीन का प्रभुत्व होने के बाद भारत के लिए एक तरह से स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, अगर आप नक्शे से देखेंगे तो वहां भी एक तरीके से कह लीजिए कि बिल्कुल वही स्थिति बन रही है जैसे कि कश्मीर की जो नियंत्रण रेखा है उस पर स्थिति बन रही है। अब सवाल यह है कि अगर भारत चाबार जो हो ही गया है इसको हासिल कर लेता है तो उसको भी एक ठिकाना मिल गया। ये जो ग्वादर बंदरगाह है, इनकी दोनों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ये दोनों केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर है, 70 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती। तो ठीक है, अगर चीन कुछ भी ऐसा कदम उठाता है तो भारत के लिए भी एक पैर रखने की जमीन है, तो इस प्रकार से वो चीन को भी काउंटर कर सकता है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर होता है, शक्ति का जो संतुलन होता है, उसको भी बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा चाबहार बंदरगाह का। तो मैं और इसमें नो डाउट कि अफगानिस्तान का भी उतना ही फायदा होगा। और मित्रों, ये अकारण नहीं है कि ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह करार भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए बसंत जैसा है, बसंत जैसे बहार, खुशी सबके लिए, विन विन की सिचुएशन है। तो मित्रों, फिर से मैंने इस टॉपिक पर आपसे थोड़ी सी बात की है और पढ़ने के तरीके को बताया है, और मुझे यकीन है कि यदि आप मेरी बातों पर थोड़ा भी यकीन कर सकेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप अपनी पढ़ाई को शायद उस तरह का शेप दे सकें जिसकी रिक्वायरमेंट सिविल सर्विस आपसे डिमांड करती है। दोस्तों, जो दूसरी जो खबर थी, मैं समझता हूं कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट खबर है, खबर थी कि भारत ने अब जो इसरो ने अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करने में जो सफलता हासिल की है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही यहां बने जिसको RLVTD का कहा जाता है उसका सफल परीक्षण किया। और अभी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यह है कि यह यान प्रक्षेपण करने के बाद फिर से वायुमंडल में वापस आ जाएगा, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, अदरवाइज फिर वो वहीं नष्ट हो जाता था, वायुमंडल में वो दोबारा प्रवेश कर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि ऐसा करने से फिर जो हम प्रक्षेपित करते हैं यान, उनका जो खर्च है वो कई गुना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने जो चीज जो पहले जाके नष्ट हो जाती थी वो चीज अब हमारे पास वापस आ जाएगी। और अभी तक ये क्षमता जिन देशों के पास थी, मैं अखबार से ही आपको देख करके बता रहा हूं, वो अमेरिका के पास थी, रूस के पास थी, फ्रांस के पास थी और जापान के पास भी थी। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। चूंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत की उपलब्धि है, इसीलिए, और चूंकि साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर जनरल स्टडीज में थोड़े से पूछे भी जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस पर एक छोटा सा नोट बना करके एक व्यावहारिक जैसी तैयारी आपको इसके बारे में कर लेनी चाहिए। मित्रों, न्यूज में तो नहीं थी लेकिन अखबारों में आप देख रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, उस पर भी आप थोड़ा सा नजर रखिएगा, और कर्टन रेजर के रूप में अगर आपको कुछ भी पढ़ने को मिले तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और चीन, खासकर अभी भारत जो परमाणु सप्लायर जो कंट्रीज हैं उनमें शामिल, उनके क्लब में शामिल होना जा चाह रहा है, अमेरिका ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन चीन इसका विरोध कर रहा है। इस लिहाज से जो हमारे राष्ट्रपति जी की चीन यात्रा है वो इस समय खासकर काफी मायने रखती है। अब राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, देखते हैं कि वहां क्या आउटकम होता है, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक पर आगे बातें करेंगे। तो मित्रों, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। मैं आप लोगों को प्रेस क्लिपिंग्स में आज कुछ प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, खासकर ये जो चाबहार बंदरगाह है और जो ग्लोबल स्पेस जो छोड़ा गया है, इस पर भी मैं न्यूज आइटम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, और बाकी फिर एडिटोरियल कमेंट और जो आर्टिकल्स हैं वो तो आपको नॉलेज सेंटर पर मिलेंगे ही। तो दोस्तों, अब अंतिम चरण है ईमेल का चरण। सभी ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। कुछ मित्रों के नाम हैं, जिग्नेश जो सूरत गुजरात से हैं, ज्योति कनिक उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, सजल जैन, आशीष कुमार जो भागलपुर बिहार से हैं, नित्या सिंह मुगलसराय से हैं, धवल परमार हिम्मतनगर गुजरात से, उमेश टांग जामनगर गुजरात से, रण बहादुर सिंह दिल्ली से, श्यामवीर सिंह उधम सिंह नगर उत्तराखंड से, सुधाकर यादव न्यू दिल्ली से, संजीव कुमार शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, अभिषेक सोनी गोंडा से, इकबाल सुल्तानपुर दोस्त से, विनोद राठी रोहतक से, संतोष गुप्ता, नील कमल यादव गोरखपुर से, विकास कुमार और मानस बेंगलोर से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।